नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिफोंट के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सरकार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में कड़े कदम उठा रही है। कहा, वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हुई। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए मानवीय सहायता बढ़ाई। C-130J विमान के अलावा भारतीय नौसेना के 3 जहाज राहत सामग्री लेकर रवाना। और लखनऊ में IPL T20 क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। भारत और चिली ने आज आपदा प्रबंधन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने एंटार्क्टिका सहयोग पर आशय पत्र का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिफोंट के साथ भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की। श्री मोदी ने गणमान्य अतिथि के सम्मान में दोपहर भोज का भी आयोजन किया। श्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चिली लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार देश है। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नई गतिविधियों की पहचान की गई है।
भारत के लिए चिली लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और पार्टनर देश है। आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। हम सहमत हैं कि इसमें और अधिक सहयोग का अनटैप्ड पोटेंशियल भी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी पर जोर दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में चिली के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है।
आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चिली को अंटार्कटिका के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच आज आशय पत्र पर हुए समझौते का स्वागत किया। इससे पहले राष्ट्रपति बोरिक ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और भारत चिली सहयोग को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। श्री बोरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। चिली के राष्ट्रपति 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आज संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सदन में विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि सदन की राय जानने के बाद चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है।
The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for work amendment bill and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on work amendment bill. Some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion.
श्री रिजिजू ने आरोप लगाए कि विपक्षी दल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस विधेयक के खिलाफ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं बल्कि न्याय देना है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
ये तो पहले ही टेबल हो चुका है, JPC से वापस आया है। जहाँ तक फॉर्मेलिटी है वो तो अभी चर्चा कब होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो मिसलीड कर रहे हैं तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है, इधर माइनॉरिटी और मेजोरिटी का।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर इस विधेयक के बारे में एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सांसद पी संतोष कुमार ने भी विधेयक पर चिंता जताते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के कुछ हिस्से असंवैधानिक हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए।
संसद चर्चा करने की जगह है, बिल आएगा तो हम इस पर चाहेंगे कि चर्चा हो, आपाधापी में बिल को पास न किया जाए। और जैसे विपक्ष ने संशोधन दिए थे उन संशोधनों को सरकार को मान लेना चाहिए।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि उर्वरक कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक घटक है और सरकार ने उर्वरक की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1744.50 रुपया होती है, ये मोदी जी की सरकार है जो 266.50 रुपया में उपलब्ध करा रही है।
और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं संसद के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र
जी,
संसद में किस तरह की गतिविधियां चल रही, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप वहाँ?
लोकसभा में अभी जो है मछुआरा समुदाय के सामने आ रही समस्याओं पर जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इसमें चर्चा चल रही है। इसके अलावा सदन में तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटें आरक्षित करने से संबंधित एक अन्य विधेयक भी लोकसभा में सूचीबद्ध है। जबकि राज्यसभा में इस समय वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा चल रही है। एक अन्य विधेयक जो आज उच्च सदन में सूचीबद्ध है वह है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025, जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करता है। यह विधेयक जो है पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। निखिल, इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मौखिक और लिखित प्रश्न उठाए गए। इनमें से एक प्रश्न किसानों के कल्याण से संबंधित था और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जो है उन्होंने दोहराई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक लिखित जवाब में बताया कि फिलहाल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए निर्धारित आय सीमा में संशोधन का जो है कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। हालांकि शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण जो है लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी जो है रसायन उर्वरक उपभोक्ता मामले वित्त स्वास्थ्य एवं अन्य मंत्रालय से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब सरकार की ओर से दिए गए। निखिल, आपको बता दूं कि प्रश्नकाल के दौरान विदेशी निवेशकों के बाहर जाने के कारण रुपये में गिरावट पर पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति काफी मजबूत है और यह 11 महीने के आयात को पूरा करने लायक है। वहीं कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गई है। जी निखिल,
जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के भुगतान ढांचे को लगातार आधुनिक बनाकर और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंबई में आज RBI की 90वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 9 दशकों में केंद्रीय बैंक की उल्लेखनीय यात्रा सरकार की दृष्टि और नीतियों के अनुरूप रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे जैसे भारत अपनी आजादी की शताब्दी के करीब पहुंच रहा है, भारत 2047 मिशन के लिए एक ऐसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत है जो अभिनव, अनुकूल और सभी के लिए सुलभ हो।
इन द फाइनेंशियल सिस्टम ओवरसीन बाय इट इन द 9 decades द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द RBI इज दिस ट्रस्ट। द RBI अर्न्ड दिस ट्रस्ट बाय स्टेडफास्टली मेंटेनिंग इट्स मैंडेट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि सरकार नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। गृहमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ दृष्टिकोण के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपराध से निपटने के लिए तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण का आह्वान किया है। उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान के दौरान ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि नए युग में एआई द्वारा उठाई गई चुनौतियों को हल करने के लिए सीबीआई को स्टार्टअप उद्योग और शिक्षा जगत के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
In our AI mission, we are collaborating with academia to create many new tools. Our academia, our scientists, our researchers today have a strength which needs to be harnessed by everybody, by the government departments, by investigating agencies, by the law officers, by everybody, so that we can create in this world of new technology, we can create technological solutions.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय वायुसेना का C-130J विमान आज सुबह 16 टन आवश्यक खाद्य सामग्री लेकर दिल्ली से मांडले के लिए रवाना हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना के जहाज 442 मेट्रिक टन खाद्य सामग्री लेकर विशाखापट्टनम से रवाना हुए हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि मांडले में भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई शुरू हो चुकी है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने आज नई दिल्ली में ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने ई स्पोर्ट्स को एक उभरता हुआ क्षेत्र बताया और इसके प्रचार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक सशक्त खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलन से खेल मंत्रालय को ई स्पोर्ट्स के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है।
मिनिस्ट्री की तरफ से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को हम अच्छी तरह से समझे, उसके जो मेन मुद्दे हैं कि उसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना है या उसमें फॉल्स क्या है, उसमें हम किस तरह से काम कर सकते। इस तरह से अगर कॉन्क्लेव होते हैं तो काफी चीजें उसमें से निकल के बाहर आती है।
भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 15 साल से अधिक लंबे शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 158 गोल के साथ वंदना भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स से होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपना सहयोग देने और अनुभव साझा करने की इच्छा व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने के कुछ दिन बाद हुए कल संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। अंतरिक्ष से भारत को देखने के लिए अपने विस्मयकारी अनुभव को उन्होंने अद्भुत बताया।
India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. So just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously, when the plates collided. And then as it flows down into India, it's many, many colors.
देश आज प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये एक अग्रणी पहल है जिसने वन्य जीव संरक्षण के परिदृश्य को बदल दिया। 1973 में आज ही के दिन भारत सरकार ने देश की घटती बाघ आबादी की रक्षा के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सरकार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में कड़े कदम उठा रही है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता बढ़ाई। C-130J विमान के अलावा भारतीय नौसेना के 3 जहाज राहत सामग्री लेकर रवाना। और आईपीएल 2020 क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।